एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudavent.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudavent.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
Oh, oh, oh.
अब समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार श्रोतागण, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर, परमेश्वर का दास, फिर से आपके पास परमेश्वर का संदेश लेकर आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का संवाद सुनने से पहले उसे विनती करें। हे हमारे सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हम चाहते हैं कि तू हमारे मन हृदय को खोल दे और हमें तेरा पवित्र आत्मा से भर दे। हमें तेरे वचन को समझने के लिए मदद कर, विशेषकर मेरे हर एक श्रोतागणों के संग हो कि वे तेरे वचनों को समझ सके और तेरे नज़दीक आ सके। पिता, उन्हें तेरे प्रेम को और अधिक गहराई से समझने के लिए मदद कर और हम सबों को तेरे राह में चला और अगुवाई कर। हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो, इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। सुना, ग्रहण कर, आमीन। आज का मेरा परमेश्वर की ओर से संदेश का शीर्षक है, यीशु आयर की बेटी को जिलाता है। यीशु आयर की बेटी को जिलाता है। गिरासेन एक जगह था जिस जगह में यीशु मसीह काम करता था। गिरासेन से लौटते समय पश्चिमी किनारे पर पहुंचने के बाद यीशु ने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ उसका स्वागत करने के लिए खड़ी है और उन लोगों ने बड़े जोश और खुशी के साथ उनका स्वागत किया। थोड़े समय तक वह समुद्र तट पर रहा तथा उपदेश देने और चंगाई करने का कार्य करते रहा और बाद में लाबी मती के घर भोज पर जाने की तैयारी करने लगा। लाबी मती यीशु का एक चेला था। उसे यीशु महसूल लेने के स्थान से उसके पीछे हो लेने को कहा था। लाबी मती तुरंत उसके पीछे हो लिया और वह उसके बाद यीशु के साथ रहकर उसके काम में शामिल होता रहा। वह महसूल लेने वाला में से था। इसी प्रकार जकई भी एक महसूल लेने वाला व्यक्ति था। जकई तो महसूल लेने वालों का सरदार था जो यरीहो में रहता था। यीशु उसके घर भी गया था और उसके यहाँ भोज किया। वहाँ उन्होंने अपने जैसे बहुत से लोगों को बुलाया था जो उसमें कुछ महसूल लेने वाले थे और उसमें और भी लोग थे जो समाज से किनारे किए हुए लोग थे। यीशु का इनसे मिलना और इनके साथ भोजन करना यह दिखलाता था कि वह सबसे मिलने वाला था और वह सबको बचाने के लिए आया था। वह पापियों से प्रेम करता, इसलिए बहुत से लोग जैसे यहूदी धर्मगुरुओं की दृष्टि में यीशु भला नहीं था क्योंकि वह पापियों से मिलता था। परंतु वह पापियों को बचाने आया था और वह धर्मगुरुओं और अगुओं से नाराज था जो घमंडी और कपटी थे। फिर भी वह उनको मदद करने से आने को नहीं रुकता। और यहाँ पर यीशु चंगाई करने और उपदेश देने का कार्य करने के बाद अपना एक चेला के घर भोज करने जा रहा था। यीशु इस दुनिया में एक धनवान परिवार से नहीं आया। वह चाहता तो वह राजमहल में पैदा हो सकता था, परंतु वह सबों के साथ उनके परिश्रमों में और उनके कठिनाई में शामिल हुआ। वैसे में कोई उसका अपने घर में दावत देता तो खुशी थी, क्योंकि वे उसको मानते थे। और तो उस बुलाने वाला व्यक्ति के लिए भी सौभाग्य होता। जब वह लाबीमती के घर बने जाने की तैयारी कर रहा था, तब वहां पर एक आराधनालय का शासक जिसका नाम था आयर, उससे उसकी मुलाकात जाती है। यहूदियों का यह शासक बहुत ही निराशाजनक स्थिति में यीशु के पास आया था। यदि किसी आराधनालय का शासक बड़ी निराशा स्थिति में यीशु के पास आया था तो दुखद अनुभव है। आराधनालय का शासक को एक बड़ा आत्मिक व्यक्ति होने का लोग उम्मीद करते हैं और सोचते हैं कि वह बहुत खुशी होंगे, परंतु यह हमेशा ऐसा नहीं होता है। उन्हें भी दुख दर्द सहना पड़ता है, उन्हें भी भूख प्यास लगती है और बीमारी तो किसी के घर में आ सकता है। धनवान इससे बच नहीं सकते, पैसा भी लोगों को बीमारी से बचाने में पर्याप्त नहीं होती है। उस समय हमें ईश्वर की अनुग्रह और मदद की जरूरत होती है। ऐसे ही यह आराधनालय का शासक के साथ था। वह आत्मिक बातों को जानता था, पर यह जानना कि हमें ईश्वर से मदद मिल सकती है काफी नहीं है, हमें तो ईश्वर को जानना होगा। यह आराधनालय का शासक बहुत ही निराशाजनक स्थिति में यीशु के पास आया था और यीशु के पैरों पर गिरते हुए विनती करने लगा, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। वह उसकी अकेली बेटी थी। यीशु तुरंत ही उस शासक के साथ उसके घर के लिए चल पड़ा। यद्यपि चेलों ने उसके दया करने वाले बहुत से कामों को देखा था, यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि वह इस घमंडी रब्बी की बात को मान लिया। फिर भी वे अपने गुरु के साथ हो लिए और उनके पीछे लोगों की भीड़ उत्सुकता से देखने के लिए चल पड़ी। आराधनालय का शासक का घर बहुत दूर नहीं था, परंतु यीशु और साथी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि भीड़ का चारों ओर से दबाव था और देरी होते देखकर वह पिता परेशान था। प्यारो, यदि आपको लगता है कि यीशु देर कर रहा है और आप परेशान हैं, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप विश्वास करें, आप घबराएं नहीं, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसा अच्छा चीज होने जा रहा है जिसको आपने नहीं सोचा था, जिसे आपने नहीं मांगा था, आपके चाहने से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जैसे कि यीशु का मित्र लाजर जब बीमार हो गया था, तब उसको खबर भेजा गया था उसकी बहनों के द्वारा कि उनका मित्र जिससे वह प्रेम करता है बीमार है। वे चाहते थे कि यीशु आए और उसके मरने से पहले उसे चंगा कर दे, परंतु वहां भी यीशु अपने कार्य लोगों को चंगाई करने और मदद करने में लगा हुआ था और वहां वह तुरंत नहीं आया। पर वहां भी यीशु ऐसा चमत्कार किया कि लोग उस पर विश्वास किए और उसे अपना मुक्तिदाता और जीवनदाता समझकर अपनाए। यह शासक देरी होते देखकर परेशान हो रहा था, परंतु यीशु जिसे भी किसी प्रकार की पीड़ा में पड़े देखता, वह उसे मदद करने के लिए तत्पर रहता, वह उसे मदद करने के लिए तैयार रहता। वह चाहता कि सब कठिनाई और पीड़ा से मुक्त हो। यीशु लोगों पर तरस खाकर रास्ते में कहीं कहीं पर रुकता और पीड़ित लोगों को चंगाई देता हुआ अथवा कष्ट उठा रहे व्यक्ति को ढाढ़स दिलाता हुआ आगे चल रहा था। अभी वे लोग मार्ग में ही थे कि भीड़ को चीरता हुआ एक संदेशवाहक आया, जो आयर के लिए संदेश लाया था कि उसकी बेटी मर चुकी है और गुरु को अब आगे ले जाने के लिए कष्ट देना बेकार है। आयर के दिल में क्या गुजरा होगा? आप क्या सोचते हैं? आप ऐसे में क्या करते? वह उसकी अकेली बेटी थी, उसका हृदय टूट गया होगा। यीशु भी उसके दुख में दुखी था। वह यीशु उसके दुख को समझता था। वह शासक भी शायद सोच रहा था होगा कि यदि यीशु जल्दी आता तो उसकी बेटी नहीं मरती। अब वह क्या कहता? क्या वह यीशु से कहता कि हे प्रभु, मेरी बेटी तो मर चुकी है, अब आप मेरे घर आने की कष्ट ना करें। पर यीशु ने तो संदेशवाहक के बातों को सुन चुका था और वह उस शासक से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। आयर यीशु के बात को सुना और यीशु के और पास आ गया और दोनों जल्दी जल्दी शासक के घर की ओर चल पड़े। वहां पर रोने और शोक करने वालों की भीड़ लगी हुई थी। लोगों की बिलाप करती हुई भीड़ को देखकर यीशु की आत्मा को बड़ा दुख हुआ। यीशु लोगों के दुख में दुखी होता है, वह आपके दुख में दुखी होता है और वह उस दुख को दूर करने का प्रयास करता है। यीशु ने उन्हें यह कहते हुए चुप कराने की कोशिश की कि रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। पर इस अनजान परदेशी की बातों को सुनकर वे लोग क्रोधित हो गए। प्यारो, जब आप दुख में होते हैं और रोते हैं, यह सोचते हैं कि अब सब कुछ चला गया, अब कुछ भी नहीं बचा है, तब यीशु आपसे कहता है, मत रो, अभी भी आपके लिए आशा है। हाँ प्यारो, यीशु में हमारा आशा है, वही हमारा आशा है, उससे सब कुछ संभव है, सर्वशक्तिमान है। पर वे इस अनजान परदेशी की बातों को सुनकर क्रोधित थे। उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था कि बच्ची मर चुकी है और उसका ठट्ठा उड़ाते हुए हंसने लगे। उन सबको वहां से हट जाने को कहते हुए यीशु ने बच्ची के माता पिता तथा अपने तीन शिष्यों पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर घर के भीतर प्रवेश करके उस कक्ष में गया जहां लड़की की लाश पड़ी थी। यीशु बिस्तर के पास गया और बच्ची का हाथ अपने हाथ में लेकर धीरे से उसके घर की भाषा में उसे कहा, हे लड़की, उठ। तुरंत उस प्राणहीन शरीर में थरथरी होने लगी, उसके जीवन की नाड़ी फिर से चलने लगी, बंद पड़े होंठ मुस्कुराने लगे, आंखें इस प्रकार से खुल गई मानो नींद से जाग उठी हो, और लड़की चकित होकर अपने आसपास की भीड़ को देखने लगी। वह उठ खड़ी हुई और अपने माता पिता ने उसे अपने बाहों में भर लिया और आंखों में खुशी के आंसू भरकर रोने लगे। हाँ प्यारो, जब आप मुश्किल में हैं और आप यीशु से प्रार्थना करते हैं और यीशु आपका प्रार्थना को उत्तर देने में देरी करता है, तो समझ लीजिए कि आपको आपके मांगने से ज्यादा मिलने वाला है, बशर्ते कि आप उसके साथ हैं और उसके बातों में विश्वास करते हैं। ऐसा ही मार्था और मरियम के साथ हुआ। उनका भाई लाजर बीमार था। उन्होंने यीशु से यह खबर भिजवा चुका था, लाजर यीशु का मित्र था। मार्था और मरियम अपेक्षा कर रहे थे कि यीशु आए और उनका भाई को बीमार हालत से उठाकर ठीक कर दे, किंतु यीशु उस स्थान में और दो दिन रहा जहां वह काम कर रहा था। और जब यीशु मार्था और मरियम का घर आया तो लाजर का मरा हुआ चार दिन बीत चुका था, परंतु वहां भी यीशु बहुत बड़ा चमत्कार किया। यीशु लाजर को कब्र से जी उठाता है। वहां भी लोग रो रहे थे, परंतु यीशु ने उन्हें शोक ना करने को कहा क्योंकि लाजर सो रहा था। बाइबल बताती है कि मृत्यु सोने के समान है। यीशु मृत्यु को सोने से तुलना किया है और यीशु इस गहरा निद्रा से लोगों को उठा सकता है। बाइबल बताती है कि इस निद्रा मृत्यु में मनुष्य कुछ नहीं जानता है। बाइबल कहती है सबोपदेशक 9:5-6 में कि परंतु मरे हुए कुछ भी नहीं जानते हैं और ना उनको कुछ बदला मिल सकता है, क्योंकि उनका स्मरण मिट गया है। उनका प्रेम और उनका बैर और उनकी डाह नष्ट हो चुकी, और अब जो कुछ सूर्य के नीचे किया जाता है उसमें सदा के लिए उनका और कोई भाग ना होगा। यह सबोपदेशक 9:5-6 में मिलता है। किंतु यीशु इस गहरी निद्रा से उन सब को उठा सकता है जो उस पर विश्वास रखते हैं, जो उनमें विश्वास रखते हैं। बाइबल इसे 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17 में बतलाती है। यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं, उन्हें मरे हुओं में से जिला लिए जाएंगे। यदि वे उसके आने से पहले मर भी जाते हैं, जब वे आएंगे प्रभु यीशु मसीह उन्हें जिलाएंगे, क्योंकि यह बाइबल की वचन कहती है। प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे जिलाए जाएंगे। जब उस आराधनालय का शासक की बेटी जी उठी तो उसको कुछ मालूम नहीं था कि क्यों उसके घर के बाहर इतना भीड़ थी। उसे कुछ मालूम नहीं था मृत्यु अवस्था में कि क्या हुआ था। जब यीशु ने उसे जिला उठाया तो उसके माता पिता उसे अपनी बाहों में भर लिए और आंखों में खुशी की आंसू भरकर रोने लगे। जब यीशु दूसरी बार आएगा विश्वासी लोगों को जिलाएगा, और प्रियजन जो अपने परिवार के लोगों से बिछुड़ गए थे उनका फिर से मिलन होगा। यीशु उनका दुख का आंसू पोंछ डालेगा, उनके बीच खुशी होगा। यीशु जहां आता है वहां खुशी लाता है। वह आज आपको खुशी देना चाहता है, वह आपके जीवन में खुशी लाना चाहता है। क्या आप उसको आज अपना जीवन में स्थान देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि वह आपके जीवन में खुशी लावे? परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम उसके साथ रहे और दुख से दूर रहे और उसमें खुशी और आनंदित रहे, उसके साथ हमेशा के लिए रहे। आप इस बातों में विश्वास करिए, परमेश्वर आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे सशक्तिमान दयालु महान परमेश्वर पिता, हम फिर से तेरे पास आते हैं, तेरा नाम पुकारते हैं पिता। इस सुंदर संवाद के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू सामर्थी परमेश्वर है। तू प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा, वो हमसे अति प्रेम किया, वो हमें बचाने के लिए अपना जान दे दिया और हमें दुख और बीमार से वह बचाने के लिए आया, और वह हमें मृत्यु से भी बचाने सकता है। हम उस पर विश्वास रखें। हम सबों को तो आशीष दे पिता, मेरे सब श्रोतागणों के संग हो जो सुन रहे हैं, उनके मन में विश्वास बढ़ा पिता, और हम सबों को तेरे करीब ला। हम तेरे विश्वास में बढ़े और हमें तू बचा, हमें तेरे राज के लिए तैयार कर और उस स्वर्ग राज में ले चल। इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना ग्रहण कर, आमीन।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें, या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR Adventist World Radio, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindirsamc@sudaven.org।
मैं हूं गौरव चौहान,
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें।
तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।